प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज का जो प्रभु की ओर से संदेश है वो है अनुशासन। अनुशासन यानि डिसिप्लिन। ये शब्द अनुशासन का अर्थ अगर हम किसी डिक्शनरी में अगर देखें तो इसका ये अर्थ आता है कि किसी को कंट्रोल में रखें या किसी को आपके जो हुक्म है वो मानने के लिए मजबूर करें। अनुशासन ये काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये शब्द को नहीं जानता। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े भी जानते हैं, विश्वासी भी जानते हैं, अविश्वासी भी जानते हैं अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में। जो बच्चे होते हैं वो उनका अनुशासन उनके माता पिता करते हैं। स्कूल में बच्चों का जो डिसिप्लिन होता है वो टीचर्स करते हैं। जो पुलिस होती है वो जो गलत करने वाले लोग हैं उनको डिसिप्लिन करते हैं। और जो कलीसिया होती है वो अनुशासित करते हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं वो जो भटकते हैं, जो प्रभु के रास्ते को छोड़कर दूर चले जाते हैं उनको अनुशासित करता है। अनुशासन ज़रूरी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति वचन 13 उसका 1 में ये लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है परंतु ठट्ठा करने वाला तुर्की को भी नहीं सुनता। अगर पुत्र बुद्धिमान है तो अपने पिता की शिक्षा को जरूर सुनेगा। और अगर उसका जो बेटा बुद्धिमान नहीं है तो अगर वो पिता डांटेगा भी तो भी वो नहीं सुनेगा। तो अगर बेटा अगर अपने पिता की बातें नहीं सुनता, अगर बेटा अपने पिता अगर डांटे फिर भी नहीं सुनता तो पिता ने क्या करना है? वो भी परमेश्वर में अपने वचन में लिखा है, नीति वचन 13:24 में, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बेरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यानी कि जो माता पिता अपने बच्चे या अपने जो बच्चे हैं उनको नहीं दंडित करते हैं जब वे नहीं सुनते, तो अगर दंडित नहीं करते तो इसका यही अर्थ निकल आ जाता कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। लेकिन अगर वाकई अपने बच्चों से अगर प्यार रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जब बच्चे गलत करते हैं तो अवश्य माता पिता उनको दंड देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना है, उनको सिर्फ अच्छी तरह से उनको समझाना है, प्यार से समझाना है। लेकिन परमेश्वर जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सब जानने वाला है, अपने वचन के द्वारा ये कहता है कि ज़रूरी है कि जो माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों को डांटना और बच्चों को दंडित करना अवश्य है। परमेश्वर ने जो माता पिता हैं उनको एक जिम्मेदारी दी है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेकर चलना, उनको डिसिप्लिन करना। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, सभी जो माता पिता हैं उन्होंने करना है। हालांकि जो पिता है उसका ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बनिस्बत जो माता है। जो पिता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है अपने बच्चों को अनुशासित करने में। नीति वचन 22 उसका 6 में ये लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीति वचन 22 का 15, लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। लड़के के मन में मूर्खता बंधी रहती है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। नीति वचन 20 उसका 30, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। नीति वचन 19 का 18, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब तक उम्मीद है, जब तक आशा है, तो माता पिता ने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है या ताड़ना है या डांटना है या फिर छड़ी का उपयोग करना है जब वो गलत करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं इस तरह से तो हो सकता है कि आगे चलकर उम्मीद ना हो, उम्मीद ना बचे। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है हमारे बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, न सिर्फ डिसिप्लिन करना बल्कि उनको सही रास्ते पर लेके जाना, जो प्रभु का रास्ता है उस तरफ हमें उनको लेके जाना है ताकि वे प्रभु के प्रभु को आदर करें, प्रभु को इज्जत करें और प्रभु की जो चीज़ें हैं उनकी इज्जत करें और एक गॉडली लाइफ यानी कि एक एक प्रभु को पसंदीदा जो जिंदगी है वो जिए। अगर हम जो चीज़ों परमेश्वर ने कहा है अगर हम नहीं करते, माता पिता के होने के बावजूद भी अगर हम नहीं करते तो न सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं उनको परमेश्वर दंडित करेगा बल्कि हमें भी उसका दंड भुगतना पड़े। हम बाइबल में पढ़ेंगे पहला सैमुअल उसका दूसरा चैप्टर उसका 12 से 17। में ये लिखा है, येली के पुत्र तो लुच्छे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बल्ली चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकड़ने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कहड़ी व हांडी व हिंडे व तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। यूं ही वे शिलों में सारे इसराइलियों से किए करते थे जो वहां आते थे और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बल्ली चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। बारहवें वचन में ये लिखा है कि यली के पुत्र तो लुच्छे थे, उनको यहोवा उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना यानी कि यहोवा का कोई परवाह नहीं करते थे। यली जो था वो याजक था और उनके बेटे भी याजक थे। इसका यह अर्थ है कि परमेश्वर के बारे में वो जानते थे, परमेश्वर की चीज़ों के बारे में जानते थे, फिर भी उन बेटों को परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी। हमारे ज़िंदगी में भी हम जान सकते हैं कि क्या हमें परमेश्वर की पहचान है या नहीं, कि हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं या नहीं। प्रार्थना में क्या हम प्रार्थना करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या हम बाइबल को पढ़ते हैं या किस तरह से पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, क्या हम बाइबल को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, कितने करते हैं, क्या हम उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, कि हम कलीसिया को, कलीसिया में हम हर हफ्ते आते हैं, कब आते हैं, लेट आते हैं या जल्दी आते हैं, हमारा जो खाली समय है वो किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं, उस समय में हम क्या करना चाहते हैं, इन सब ई बातों में हम जान सकते हैं कि क्या हम वाकई प्रभु की इज्जत करते हैं, प्रभु के जो चीज़ें हैं उनको हम इज्जत करते हैं या नहीं। 13वें वचन में, 13वें से 17 में हमने भी पढ़ा कि जो चर्बी, मांस की जो चर्बी थी वो था सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए ये जो चर्बी थी वो जलाया जाता था, उसके बाद जो मांस बचा वो याजकों के लिए होता। तो 17वें इसमें लिखा है कि इसलिए जब उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्यों यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तिरस्कार करना मतलब यहोवा का जो भेंट है उसका तिरस्कार करना, यानी कि इसमें इसका कोई हमें वैल्यू ना हो। परमेश्वर जो है उसका सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए हमारे जिंदगी में। यह हम देखते हैं कि यली के जो बेटे हैं उन्होंने, जो परमेश्वर है उनको दूसरे स्थान में डाल दिया, सबसे पहले अपने आप को तिरस्कार करने लगे, कि हम भी परमेश्वर के जो चीज़ें हैं उनका तिरस्कार करते हैं, कि हम भी परमेश्वर की जो चीज़ें हैं उनका कोई महत्वपूर्ण महत्व नहीं देते। हम प्रार्थना को किस तरह से लेते हैं, क्या हम किस तरह से हम बाइबल को लेते हैं, या बाइबल स्टडी को लेते हैं, या किस तरह से हम 10वें भाग को लेते हैं, और किस तरह से हम जो चर्च है, जो कलीसिया है, हफ्ते में आना किस तरह से हम लेते हैं इन चीज़ों का। अगर हम तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को इज्जत नहीं देते हैं, तो जाहिर है कि परमेश्वर जो है एक पिता के समान है, अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना के लिए शुरू करता है, दंडित करने के लिए शुरू करता है। पहला सामुएल चैप्टर 2 उसका 22 से 24 में हम पढ़ते हैं, 22 और 24 में ये लिखा है, और यली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, क्योंकि जो समाचार मैंने सुनने में आता है वो अच्छी नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ यली जो है उन्होंने सिर्फ एक एक बस प्रश्न पूछने लगा कि तुम ये सब क्यों करते हो। पच्चीस आयत में, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न माने, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने को थी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय एली के बच्चों पर आ गया। अगर हम माता पिता होने के नाते, अगर हमने जो हमारी हमसे उपेक्षा परमेश्वर करता है वो हम नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को डिसिप्लिन करने शुरू करेगा। और रोज ये जो ताड़ना है परमेश्वर की तरफ से वो काफी सख्त हो सकती है। यहां देखते हैं कि परमेश्वर एली के बेटों को मौत देता है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं डिसिप्लिन करते हैं, उनको सही दिशा में नहीं लेकर जाते हैं, प्रभु के रास्ते पे नहीं लेकर चलते हैं, और नहीं ये नहीं सिखाते हैं कि प्रभु को इज्जत देनी है या प्रभु के जो चीज़ें हैं उनकी इज्जत करनी है, न सिर्फ बच्चों को परमेश्वर दंडित करता है बल्कि बच्चों के पिता माता पिता दोनों को भी दंडित करता है। 27 से 34, और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था, और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इज़राइल चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी विधि वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोड पहने करें, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुल हवे न दिए थे, इसलिए मैंने मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाए की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदित हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहे करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझ जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरा मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा उन्हें न पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बुरा न हो नहीं पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोषित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे, और मेरी इस बात का चिन्ह का विपत्ति होगी जो होपनी और फिनास नाम तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। अपने बच्चों का आदर परमेश्वर से अधिक करें करने का दंडित, यानी कि परमेश्वर को तुच्छ मानना। एली ने अपने बेटों का आदर जो इज्जत है परमेश्वर से अधिक करने लगा। अभी हमने ये देखना है कि परमेश्वर ने इतना भयानक दंड एली के बच्चों का मौत क्यों ऐसा उन्होंने निश्चय किया। हम पढ़ेंगे उसका पहला सैमुएल तीसरा चैप्टर 11 से 14 में इसका हम उत्तर ढूंढेंगे। यहोवा ने सैमुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न हो, मेलबलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। परमेश्वर कहता है कि एली जानता था अपने बच्चों का गुनाह के बारे में, उनके बेटे का गुनाह के बारे में एली जानता था, लेकिन उन्होंने कभी उनको नहीं रोका। तो परमेश्वर कहता कि एली जानते हुए भी अपने बेटों को नहीं रोका। तो इस जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, उसमें परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हम माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करना है, उन्हें सही दिशा देनी है। अगर वो नहीं मानते नहीं सुनते तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको दंडित करना है, अनुशासित करना है, छड़ी का उपयोग करना है, ताकि आगे चलकर वह एली के बेटों जैसे परमेश्वर का तिरस्कार नहीं कर सके, तुच्छ नहीं माने। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सही दिशा दिखाते तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर एक कठोर दंड अपने बच्चों को दे सकता है। तो आज का जो संदेश है वो यही है कि अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, लेकिन उन्हें हमें सही दिशा में लेकर जाना है। क्योंकि परमेश्वर जो है उनके जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। आखिर में हम इब्रानी 12 उसका 3-11 पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाब न छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाए दिया जाता है भूल गए हो कि मैं तेरे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब तुझे झिड़के तो हियाब न छोड़ो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है तो उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ से के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए पीछे उन्हें चैन की साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो आज का संदेश, परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अनुशासित अपने बच्चों को करना है, हमें खुद अनुशासन में जिंदगी बिताना है। अगर हम नहीं करते तो परमेश्वर हमें दंडित करता है। हो सकता है कि परमेश्वर का जो दंड है, परमेश्वर का जो ताड़ना है काफी भयानक हो। तो हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें अपने आप को अनुशासित करना है, अपने बच्चों को अनुशासित करना है, किस तरह से अपने आप को सही मार्ग पर लेके जाना है, अपने बच्चों को आपके जो मार्ग हैं उन पर लेके जाना है, आपको किस तरह से उनको सिखाना है कि आपको इज्जत करें, आपको चीज़ों की इज्जत करें, किस तरह से कलीसिया को इज्जत करें, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, इन सब चीज़ों में किस तरह से आपको इज्जत दें, हमें सिखाएं प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करें ताकि हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर हम लेके जाएं। परमेश्वर आपसे हम यही मांगते हैं कि हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दें, ताकि आपके जो बताए गए जो आदेश है उन पर हम हमेशा चलें और आपको खुश करें। यही हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन।